सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत।
हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। आज हम सुनेंगे सीजन 4 का 18th एपिसोड। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में आप सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि पांडवों को राजसूय यज्ञ करने के लिए जरासंध का वध करना होगा। आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ के संकल्प के विषय में सुना। यज्ञ को करने की इच्छा से युधिष्ठिर सभी से इस विषय में चर्चा करके उनका मत सुन रहे हैं। अंतिम निर्णय लेने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने भी राजा युधिष्ठिर को यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस यज्ञ में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है जरासंध। चलिए जानते हैं ये जरासंध पांडवों के लिए चुनौती किस प्रकार है। श्री कृष्ण ने कहा, सभी क्षत्रिय जरासंध के अधीन होते जा रहे हैं, सब उसका यश देखकर ही उसके आश्रित होते जा रहे हैं। उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोज वंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाल्व, पटचर, कुंती और शालवायन आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पांचाल और पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय और राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पंचाल देश क्षेत्र जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की दो पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। अब कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बन बैठा था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोजराज वंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलदाव को साथ ही बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलदाव ने कंस और सुनामा को मार डाला। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को आघत हो गया। राजन, उस समय भोज वंश के 18 कुल ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया और इस निश्चय पर पहुँचे कि यदि हम लोग शत्रुओं पर निरंतर आघात करते रहे तो भी 3 वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंभक उसके सहायक हैं, जो बल में देवताओं के समान है। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त था कि वे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस, डिंभक और जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं। यह केवल मेरा ही मत नहीं है, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं, उन सबका यही विचार रहा है। जरासंध के साथ जब हमने 17वीं बार युद्ध किया था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था। वह उस युद्ध में बलदाव के द्वारा मारा गया। यह देखकर सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। उसकी वह बात कान में पड़ते ही डिंभक अपने भाई को मारा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता हूँ, ऐसा निश्चय करके डिंभक ने भी अपनी जान दे दी। डिंभक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मर गया। उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और वापस अपनी राजधानी को लौट गया। उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग दोबारा मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की पत्नी ने अपने पिता जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो, फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को अलग अलग बांट कर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र और भाई बंधुओं के साथ शत्रुओं के भय से भाग चले। ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और हम रेवतक पर्वत पर निवास करने लगे। हम लोग द्वारकापुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं। हम जरासंध के अपराधी हैं। शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर रेवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। मेरा तो यही विचार है कि अगर आप राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं तो आपको जरासंध का वध करना ही होगा। उसने सब राजाओं को जीत कर गिरिव्रज में कैद कर रखा है। राजा जरासंध ने महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। वह अपनी प्रतिज्ञा पहले ही पूरी कर चुका है क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अभी तक वही निवास कर रहे हैं। यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा। आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। सभी बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा, माधव आप बुद्धिमान हैं। आपकी जैसी बातें कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप भी जरासंध को नहीं जीत पाए तो भला हम उसे कैसे जीत पाएंगे। मुझे लगता है कि राजसूय यज्ञ करने का यह संकल्प मुझे त्याग देना चाहिए है। तभी युधिष्ठिर के मन में दोबारा एक विचार आया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, माधव क्या आपसे भ्राता बलराम भीम और अर्जुन से भी वह मारा नहीं जा सकता है। मैं जानता हूँ कि आपकी शक्ति अनंत है, पर मैं फिर भी इस बात पर बार बार विचार कर रहा हूँ। इसी बीच भीम ने कहा, महाराज श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है, अर्जुन में विजय की शक्ति है, हम तीनों मिलकर जरासंध का वध कर सकते हैं, हमारी विजय निश्चित ही है। लेकिन युधिष्ठिर अभी भी चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे आप सबके बल पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं आपको जरासंध के पास कैसे भेज दूं? भीम और अर्जुन मेरे नेत्र हैं और श्री कृष्ण को मैं अपना मन मानता हूँ। अगर मैंने अपने नेत्र और मन खो दिया तो मेरे जीवन का क्या अर्थ होगा? राजसूय का अनुष्ठान बहुत कठिन है। तभी अपना मत देते हुए अर्जुन ने कहा, यदि हम राजसूय यज्ञ की सिद्धि के लिए जरासंध का वध और कैद में पड़े राजाओं की रक्षा कर सके तो उससे उत्तम और क्या हो सकता है। यदि हम यज्ञ का आरंभ नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारी अयोग्यता और दुर्बलता प्रकट होती है। महाराज आप सुनिश्चित गुण की अपेक्षा करके निर्गुणता का कलंक क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्या पांडव राजसूय यज्ञ कर पाएंगे? ये जानने के लिए आपको लौटना होगा हमारे अगले एपिसोड में। हमारे अगले सीजन में हम शुरुआत करेंगे जरासंध की जन्मकथा से और आपको बताएंगे कि आखिर जरासंध इतना शक्तिशाली और अजय क्यों है। चलिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले सीजन में। आज के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मन पसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।